सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जलो द्वाद सांग मई सरस्वती माता की जय। सरस्वती की प्रतिकृति परम पूज्य गणिनी प्रमुख हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अब छह ढाला की क्लास प्रारंभ हो रही है। तीन भुवन में सारे वीत रागे भी ज्ञान था, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। जय आत्म राम बोलो, जय जय आत्म राम, जय आत्म राम बोलो, जय जय आत्म राम। हर आत्मा में छिपा है भगवान, हर आत्मा में छिपा है भगवान। बोलो जय आत्म राम बोलो, जय जय आत्म राम। भाव में भ्रमण की है लंबी कहानी, काल अनादि से दुखी अज्ञानी, काल अनंत निगोद में बिताया, जन्म मरण करे बहु दुख पाया। कैसे बने आत्मा भगवान, कैसे बने आत्मा भगवान। बोलो जय आत्म राम बोलो, जय जय आत्म राम, जय आत्म राम बोलो, जय जय आत्म राम। वीतराग विज्ञान का वो प्रस्तुत करने वाली मंगलाचरण के साथ में मोक्ष को आत्मा में साकार रूप प्रदान करने वाला वीतराग विज्ञान जो है वह भेद विज्ञान का सूचक है। आज पहला अक्षर गौण हो गया और दूसरा अक्षर प्रधान हो गया, अर्थात वीतरागता समाप्त होकर केवल विज्ञान का युग आ गया और विज्ञान का शोर मच रहा है। वहीं अहिंसा गौण होकर के हिंसा का जोर चल रहा है, हिंसा का युग चल रहा है। ऐसे में भी सम्यक ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाले हमारे गुरुजन और उनकी वाणी सबके मन को शांत करने वाली है। पूर्वाचार्यों की वाणी के अनुसार छह ढाला छोटी सी कृति है, लेकिन इसके अंदर आत्मा के सार भरे हुए। अनादिकालीन संसार में भ्रमण की कथा को कहते हुए दुखों की श्रृंखला में निगोद की पर्याय से अपनी कहानी को शुरू किया गया। किस जीव ने यानी हम सब ने निगोद कि एक केंद्रीय पर्याय में नित्य निगोद के अंदर भी आयु बिताई, उसके पश्चात किसी किसी तरह करके दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री की पर्यायों को प्राप्त किया, विकलत रहे रहे अर्थात इंद्रियां पूर्ण नहीं हो पाई और दुख को सहन करता रहा। बड़ी मुश्किल से त्रस्त पर्याय मिली, तो त्रस्त पर्याय में भी पशु की पर्याय यानी अगर पंचेंद्री पर्याय भी मिल गई तो उसमें पशु की पर्याय में गए तो तिर्यंच गति के अंदर यानी पशु गति के अंदर असैनी और सैनी के दुखों का वर्णन किया जा रहा है। केवल सुनना नहीं है, गुणना है। हमने भी ऐसी ऐसी पर्याय प्राप्त की हैं, लेकिन आज थोड़ा सा ज्ञान हुआ, विवेक मिला, तो भी अहंकार में डूब करके हमने कभी दूसरों का अपमान किया और न जाने कितने कितने कर्मों का बंध करके पुनः पुनः दुर्गतियों में जा करके दुख उठाए। तो उसी श्रृंखला में छठी चौपाई के अंदर तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन किया जा रहा है। कबहुँ पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक सैनी भय क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। सब लोग एक साथ बोले स्वर में, कबहुँ पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक सैनी भय क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। यानी कि आप कुछ मंद हुआ, दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री की पर्याय से क्रम से पंचेंद्री में भी पहुंच गए तो पशु हो गए। पंचेंद्री पशु होकर के अगर असैनी हो गए, सैनी असैनी पंचेंद्री के दो भेद हैं, सैनी और असैनी। ये पशुओं में, मनुष्य तो सैनी ही होता है, पशुओं में सैनी और असैनी माने संगी और असंगी। तो जिनके अंदर शिक्षा उपदेश ग्रहण करने की शक्ति होती है, मन होता है, वे सैनी संगी प्राणी कहे जाते हैं। और जिनके अंदर शिक्षा और उपदेश को ग्रहण करने की शक्ति नहीं होती, उन प्राणियों को असैनी असंगी कहा जाता है। तो उनमें कोई कोई सरीसृप माने पानी में रहने वाले, कोई कोई सांप और कोई तोते, इनको असंगी भी माना है कि ये मन रहित होते हैं। ऐसे में इन्हें हित अहित का विवेक नहीं रहता। तो कहा कि तब मन के बिना निपट अज्ञानी, निपट अज्ञानी माने केवल अज्ञानता ही रही, कहते ना ये तो निपट मूर्ख है, माने केवल मूर्खता ही इसके पल्ले पड़ी है। तो निपट अज्ञानी रहा माने कोई ज्ञान नहीं मिला, और ज्ञान प्राप्त करने का जो सबसे बड़ा निमित्त था मन, वह मन ही नहीं है। तो मन के बिना ये जीव करता क्या, अज्ञानी ही अज्ञानी रहा। और कभी सैनी भी हो गया तो सिंहादिक सैनी वह क्रूर, सैनी भी हो गया, संगी भी हो गया तो सिंह बन गया, कभी अजगर सर्प बन गया, न जाने कितनों को निगल लिया, न जाने कितनों को खा लिया, न जाने कितनों को मार दिया। तो निबल पशु हति खाए भूर, बहुत सारे पशुओं को जो निर्बल थे बेचारे, अपनी रक्षा स्वयं करने में तत्पर नहीं थे, इन बड़े पशुओं से अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते थे, ऐसे निर्बल पशुओं को मार मार करके खाया। तो ये किसकी परिणति बता रहे हैं, ये पशुओं की प्रवृत्ति बता रहे हैं। जो रात दिन हम देखते हैं अपनी आंखों से, कई बार लोग चारों गतियों के अस्तित्व को नहीं स्वीकार कर पाते और कहते यही तो नरक है, यही स्वर्ग है। अरे भैया, चार गति हैं, तिर्यंच गति, नरक गति, देव गति, मनुष्य गति। तो आप मनुष्य गति और तिर्यंच गति को देख ही रहे हो। जब दो गति और दो गतियों में प्राप्त होने वाले दुखों को, सुखों को, उनकी जिंदगियों को देख रहे हैं, तो तीसरी और चौथी गति कहाँ चली जाएगी? ये जीव कहीं से तो आया है, कोई देव गति से आते हैं, अच्छे अच्छे परिणाम होते हैं। हर वक्त जो संक्लिष्ट रहते हैं, दूसरों को संक्लेश में करते हैं, कहते हैं क्या नरक से आया है क्या? यानी वहां निरंतर संक्लेश में ही जिया तो किसी तरह से मनुष्य गति भी प्राप्त कर ली, तो वहां भी आकर के शांति की अनुभूति नहीं कर पाता, ना दूसरों को शांत रख पाता है, ना देख पाता है। ऐसे जीवों के लिए कह दिया जाता है, जब ज्यादा दुख होता है तो नरक जैसी वेदना है, कह देते ना नरक जैसी वेदना है। लेकिन ये नहीं मालूम कि नरक में वेदना है कैसी, जब आगे पढ़ोगे ना, 1,000 बिच्छू डस ले तो भी उतनी वेदना नहीं होगी जितना नरक की भूमि को स्पर्श करने में होता है। लेकिन जब जीव ज्यादा दुखी हो जाता है तो कहता है पशु जैसी जिंदगी है, नरक जैसा दुख है, कह देते हैं बिगड़ते पापों कामों को देख करके, और बहुत सुखी है तो कह देखो स्वर्ग जैसा सुख है। आज हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जब हस्तिनापुर से आए तो ज्ञानमती माता जी से कह रहे थे, माता जी स्वर्ग जैसा सुख है हस्तिनापुर में, जम्बूद्वीप स्थल का कण कण एकदम स्वच्छ सुंदर, हरियाली, जिन मंदिर आभा को बिखेर रहे हैं, पॉजिटिव ऊर्जा ही ऊर्जा जहां से निकल रही है, ऐसे स्थान को किसने बनाया है? ज्ञानमती माता जी ने तो बनाया, और उसे किस सुख की अनुभूति करा रहे थे कि ज्ञानमती माता किसी तरह से वहां की परमाणुओं से पुनः आकर्षित हो जाएं और हस्तिनापुर चलने की बात कर दें। लेकिन अयोध्या की भूमि पर रहकर पूज्य माता जी क्या कहती हैं, अयोध्या तो साक्षात स्वर्ग की अनुभूति कराने वाला है, जहां अनंत बार स्वर्गों से देव आए, इंद्र आए, और उस जमाने में कभी स्वर्ग और धरती का तांता लगा हुआ था, एक दूसरे का लिंक जुड़ा रहता था। हर वक्त जब भगवान जन्म लेते थे ना, इंद्र भी आते थे, देव बालक बन के आते थे, भगवान के साथ खेलते थे, सारा एकदम स्वर्ग से समझो सबकी रिश्तेदारी बनी रहती थी। पालना भी झुला झुलाना हुआ सौदर्व इंद्रा था, खेलना हुआ सौदर्व इंद्राणी भी बालक का रूप बना लेते, और अयोध्या के बालकों के साथ और भगवान बालक के साथ में खूब खेल खेला करते थे। ऐसे स्वर्ग की सुख को आज इन्होंने ज्ञानमती माता जी ने अपने मन से देखा है, आंखों की चक्षु से तो जो सामने होता है वो देखा जाता है, लेकिन मानसिक चक्षुओं से वहां के अंतर्स को देखा जाता है। अंतर्स की कुंडली कहती है, यहां तो अनंतों बार देवता आए। तो आज यहां हम बात कर रहे हैं तिर्यंच गति के दुख की। अभी हम मनुष्य हैं, कोई पुण्य करके आए, एक भजन सुना बड़ा अच्छा, कि ये पिछले जन्म में अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला, अरिहंत प्रभु की शरण मिले, गुरुओं का सच्चा प्यार मिला, कि ये पिछले जन्म में अच्छे कर्म मुझे जैन कुल परिवार मिला। यानी बड़ी दुर्लभता से ये मनुष्य पर्याय मिली है, तो इन पशु गति के दुखों को सुन सुन करके, पढ़ पढ़ करके हमें मन के अंदर चिंतन करना है और चिंता भी करना है कि अब ये पशु पर्याय ना मिलने पाए। कैसे मिलती है पशु पर्याय? भाई दुख तो है, दुख अपन सामने देखते हैं कि मारा जाता है, पीटा जाता है, स्लॉटर हाउस में ले जाकर उन्हें काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, कितने दुख हैं, लेकिन ये पर्याय मिलती कैसे है? माया तैर्यज्ञोनस्य तथा सूत्र में सूत्र पढ़ते हैं ना, मायाचारी करने से तिर्यंच योनि मिलती है, ये प्रमुखता की दृष्टि से है। लेकिन और पापों को गण, जो दूसरे की हिंसा करेंगे, दूसरे पशुओं को मारेंगे, आगे जाकर पशु बन करके वे अपने को मारते हैं, और जो पशु बन करके पुण्य करते हैं वो आगे जाकर देवता बन जाते हैं। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा, अरहत चरण सपरिया महानुभावं महात्मनाम अवदत् भीकः प्रमोद मत्ता कुसुमेनैकेन राजगृहे। एक मेढक ने अच्छा कार्य किया तो उसको महावीराष्टक स्तोत्र में भी कह दिया, प्रमुदित मना दर्दुरी है मेढक के लिए। और समंत भद्राचार्य जैसे महान आचार्य ने भी कहा कि अरहत चरण सपरिया, जो अरहंत भगवान की चरण की पूजा करने चला, महानुभावम, ऐसे मेढक को कहा महानुभाव, यानी उसके भाव तो महान थे। महात्मा नाम अवदत्त, जो महात्माओं के द्वारा भी जिसके लिए कहा गया, भी कहा माने एक मेढक, प्रमोद मत्ता खुशी मन से खूब सबको देख रहा था कि कहीं जा रहे हैं हाथ में थाली वाली लेकर के। समझ में आया तो कोई महापुरुष आए हैं उनकी पूजन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में वो भी सेठ था, पत्नी के मोह में मर करके बावड़ी में मेंढक हुआ था। उसने बावड़ी से एक कमल का फूल ले लिया, बेचारा कोई सामग्री और तो ले नहीं सकता था, तो उसको लेकर के अपने मुख में दबा करके चला। और बीच में ही श्रेणिक राजा के हाथी के पैर के नीचे मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, भक्ति अधूरी रह गई, लेकिन मन में प्रमोद था, मन के अंदर भक्ति की भावना थी, तो मर करके एकदम जा करके देवता बन गया और महावीर के समो शरण में जाकर उसने अपनी भक्ति को पूरी कर लिया। देवता के रूप में आके खूब नृत्य किया, सारी सभा बैठी है समो शरण में, ये कौन सा देवता है, इसकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भक्ति है। तो श्रेणिक ने पूछा, भगवान इसने अपने मुकुट में मेढक का चिन्ह क्यों बनाया हुआ है, भगवान ये कौन सा देवता है, कहाँ से आया है। तभी भगवान की दिव्य ध्वनि गिरी और गौतम गंधर्व स्वामी ने बताया कि राजन अभी अभी आपके हाथी के पैर के नीचे मरा है ये मेढक, और देवता बना भगवान की भक्ति के कारण, और ये अब प्रमुदित होकर के यहाँ आया है, अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए आया है। एकदम देख करके भी सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। एक मेढक भी अगर भक्ति करता है तो देवता बन जाता है, और अगर पशु बन करके वह दूसरे पशुओं को खाता रहता है तो वह आगे अपनी भव की संतति को हमेशा बढ़ाता रहता है। शेर के रूप में महावीर थे एक दिन, भगवान महावीर भी एक दिन सिंह की पर्याय में थे और एक हिरण को मार करके जंगल में खा रहे थे। तब मुनिराज ने संबोधित किया कि अरे सिंहराज, तू अहिंसा का अवतार होने वाला है, कहाँ हिंसा कर रहा है, पशु को मार के खा रहा है, ये तेरी परिणति नहीं है। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। शेर था एक जंगल का राजा, उसको डर न किसी का भी था, उसको डर न किसी का भी था, वही क्या जाने परी की पी, वही क्या जाने परी की पीर। बोलो वीर महावीर बोल जय जय महावीर, वीर महावीर बोल जय जय महावीर। महावीर की पिछली पर्याय में सिंह ने एक हिरण को मार करके उसका मांस भक्षण कर रहा था, तभी आकाश मार्ग में स्थित मुनियों ने उसे संबोधित किया और तुरंत संबोधन को प्राप्त हुआ। उस सिंह को जाते स्मरण हो गया पूर्व जन्मों का, और उसने सोचा मैंने कितने कितने दुखों को उठाया है, और अब मुझे मुनिराज का संबोधन मिला है, आगे मेरी गति सुधरने वाली है। तुरंत उसने आंखों से आंसू बहाते हुए मुनिराज के समक्ष शांत भाव से एकदम व्रतों को ग्रहण करता है। वो बेचारा क्या बोलता, ना हाथ जोड़ सकता था ना वचनों से कह सकता था कि मुनिवर मुझे व्रत दे दो, अहिंसा का व्रत। उसने आंखों से नीर बहाते हुए और अपनी कलुषता को धोने का प्रयास किया। तभी मुनिराज ने उसे सम्यक दर्शन ग्रहण कराया। 5 अणुव्रत तुरंत उस शेर ने ले लिया। आज मनुष्य को लेने में हिचकिचाहट होती है, लेकिन पशु ने कुछ नहीं सोचा, उसने अणुव्रत ले लिया। मुनिवर बताते हैं, अब तो अहिंसा का पालन करेगा, अब तो कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई चोरी नहीं करेगा, किसी प्रकार का कुशील नहीं, कोई परिग्रह नहीं धारण करेगा। एकदम शेर शांत होकर के और बस आंखों से आंसू बहाता है कि मुनिवर मुझे सब कुछ स्वीकार है। और वो निराहार रह करके कुछ दिन जब तक शक्ति रही पत्ते खाता रहा, जंगल के सूखे पत्ते सेवन करता रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर हो गया और उसने अपने प्राण छोड़े और जाकर के देवता बन गया। बस वहीं से शेर का उत्थान प्रारंभ हो गया। उसके बाद 8 भव के बाद जाकर के वह शेर महावीर बन गया। भगवान महावीर का चिन्ह क्या है? शेर का चिन्ह है। शेर जैसा दहाड़ा भगवान महावीर ने कि अगर जीवन का उत्थान करना है तो जियो और जीने दो। किसी के साथ अपमान के शब्द मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की हिंसा मत करो। भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा, दो तरह की हिंसा है। हमने सोचा कि इसको मैं मार दूं, वो नहीं मरा, हमने मारा भी नहीं, लेकिन भाव हिंसा हो गई। और द्रव्य हिंसा तो कर देना, मार देना साक्षात द्रव्य हिंसा है। इन सब बातों को जान करके सुन करके और हम पशु ना बनने पाए, असैनी ना बनने पाए। आज हमें मनुष्य की पर्याय में मन भी मिला है, तन भी मिला है, वचन भी मिले हैं। तो मन वचन काय तीनों योगों को संभाल करके आज वीतराग विज्ञान विज्ञानता को नमन करते हुए और एक दिन भगवान से हम प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी एक दिन वह वीतराग विज्ञानता यदि आंशिक रूप में भी प्रकट हो गई तो निश्चित रूप से ये जीव भेद विज्ञान आत्मा भिन्न है शरीर भिन्न है उसका अनुभव करता हुआ अपने पर्याय को सार्थक करेगा। आज के स्वाध्याय का यही सार समझना कि तिर्यंच गति के दुखों को भी हम सब ने भी भोगा है। ये एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, एक पशु की कहानी नहीं है, हम सब की कहानी है। और आगे ये कहानी किसी तरह से पूर्ण हो जाए और हम अब आगे पशु गति में ना जाने पाए, यही सार है।